पाठ 35 अध्याय 23 निष्कर्ष।
लेव्य व्यवस्था अध्याय 23 में 7 बाइबल पर्वों का वर्णन और व्याख्या की गई है। हमने अब तक उनमें से पहले 4 को कवर किया है, फसह, अखमीरी रोटी और प्रथम फल के 3 वसंत पर्व और फिर एक ग्रीष्मकालीन पर्व जिसे इब्रानी में शावोत कहा जाता है, जिसे ईसाई धर्म में पेंटेकोस्ट के नाम से जाना जाता है। अब हम 3 शरद ऋतु के पर्वों पर आते हैं। हमने पहले पर्व योम तेरुआ को देखा है, जिसे हमारे समय में रोश हशनाह यहूदी नव वर्ष के रूप में जाना जाता है। यह दिन इब्रानी धार्मिक घटना कैलेंडर के 7वें महीने के पहले दिन पड़ता है। 10 दिन बाद योम किप्पुर है, जो प्रायश्चित का दिन है और जिस पर हमने पिछले सप्ताह अपने पाठ के समाप्त होने से पहले चर्चा शुरू की थी। वह था सुकोट, जिसे झोपड़ियों का पर्व भी कहा जाता है, जिसे बूथों का पर्व भी कहा जाता है।
आइए आज के पाठ का संदर्भ स्थापित करने के लिए लेव्य व्यवस्था 23 के एक छोटे से भाग को पुनः पढ़ें।
लेव्य व्यवस्था 23 को पुनः पढ़ें अंत तक।
सबसे पहले सुकोट उत्सव की तिथि तय की गई। यह 7वें महीने, जिसे आज मिश्री के नाम से जाना जाता है, के 15वें दिन से शुरू होना है। इसके अलावा यह 7 दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है और फिर 7 दिनों के बाद 8वें दिन एक पवित्र सम्मेलन होगा, पूजा करने के लिए एक साथ मिलना। पद 37 में सुकोट उत्सव अनुष्ठान के दूसरे भाग से भी परिचय कराया गया, जिसे इब्रानी में नेसेक कहा जाता है और इसका अर्थ है परिहार, या जैसा कि इसे अक्सर कहा जाता है, एक पेय भेंट। मुझे यह शब्द पसंद नहीं है, क्योंकि यह वास्तव में यहां जो हो रहा है उसकी गलत मानसिक छवि को दर्शाता है। इस परिहार में आमतौर पर पानी या शराब या दोनों होते हैं। यहां जिस एक का उल्लेख किया गया है वह जल परिहार है और वास्तविक अनुष्ठान के विस्तृत विवरण में न जाते हुए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पानी को एक विशेष बर्तन में डाला जाता है और फिर एक विशेष समारोह के दौरान मंदिर में पुजारी द्वारा इसे डाला जाता है। इस जल अर्पण का क्या अर्थ है, वाकई बहुत सरल है। यह याद करते हुए कि ये सभी पर्व कृषि आधारित हैं और झोपड़ियों का पर्व सुकोट नई फसल बोए जाने से पहले मौसम की अंतिम कटाई के समय मनाया जाता है, जल अर्पण यहोवा से बारिश के लिए प्रार्थना से जुड़ा हुआ है।
इसराइल में बारिश का मौसम आम तौर पर अक्टूबर के अंत से मार्च तक होता है। बारिश महत्वपूर्ण थी क्योंकि इजरायली सिंचाई का अभ्यास नहीं करते थे। अगर बारिश नहीं होती तो वसंत की फसल बहुत खराब होती। यह जल अर्पण हर रोज तंबुओं के पर्व के दौरान होता था। चूंकि तोरह में इस बारे में बहुत कम कहा गया है कि जल अर्पण की रस्म कैसे पूरी की जानी थी, इसलिए इसकी प्रक्रिया पर परंपराएं विकसित की गईं। और जाहिर है ये परंपराएं समय के साथ बदलती रहीं। मैं आपको शीघ्र ही यीशु से संबंधित एक कहानी दिखाना चाहता हूं, इसलिए मैं संक्षेप में जल अर्घ्य की परंपरा के बारे में बताना चाहता हूं, जैसा कि उनके दिनों में मनाया जाता था। महायाजक एक विशेष बर्तन लेकर सिलोम के तालाब में जाता और उसमें लगभग 1/4 पानी भरता। इस बीच कुछ अन्य पुजारी पानी के दूसरे तालाब में गए जहां विलो उगते थे। उन्होंने विलो को इकट्ठा किया और इन लंबी विलो शाखाओं को होम बलि की महान वेदी के किनारों पर इस तरह से बिछाया कि वे मंच से ऊपर तक फैल गई और एक तरह की छतरी बन गई। पानी के 2 अलग अलग तालाबों का इस्तेमाल एक बहुत ही व्यावहारिक कारण से किया गया। सिलोम का तालाब पास में था और यहीं से शहर को अपना ज्यादातर ताजा पानी मिलता था। सिलोम का तालाब काफी बड़ा था, कम से कम आधा एकड़ आकार का, और यह एक प्लास्टर किया हुआ तालाब था जिसे एक मानव निर्मित जल सेतु से पानी मिलता था। लोग वहां अपने कपड़े धोते थे और पीने और खाना पकाने के लिए अपने पानी के जग भरते थे। क्योंकि इस तालाब को प्लास्टर किया गया था, इसलिए यह एक बड़े आधुनिक स्विमिंग पूल जैसा था, इसलिए इसमें कोई वनस्पति नहीं उगती थी। इसलिए आवश्यक विलो शाखाओं को प्राप्त करने के लिए पुजारियों के एक समूह को पानी के एक ऐसे स्रोत पर जाना पड़ा जो प्राकृतिक था, जहां वनस्पति उगती थी। यह संभव है कि इसका स्रोत एक विशाल जलधारा थी जो किसी समय किद्रोण और हिन्नोम घाटियों से होकर बहती थी, जो शहर की दीवारों के किनारे थीं, लेकिन हो सकता है कि इस समारोह के लिए विलो की शाखाएं मंदिर तक लाने के लिए उन्हें कई दिनों की यात्रा करके यर्दन नदी तक जाना पड़ा हो।
महायाजक अपने सोने के घरे को सिलोम के तालाब में डुबोता था और फिर पवित्र शहर को घेरने वाली ऊंची दीवारों में एक प्रसिद्ध द्वार की ओर बढ़ता था। जलद्वार इसका नाम इसी समारोह के कारण पड़ा। वह वहां तब तक प्रतीक्षा करता था जब तक कि कुछ लैव्य व्यवस्था 3 बार तुरी नहीं बजा देते थे और फिर वह महान वेदी पर जाता था और बड़ी भीड़ के सामने ऊंची आवाज में यह कहते हुए पानी उंडेलता था, इसलिए तुम आनंद के साथ उद्धार के कुओं से पानी भरोगे। यह यशायाह 12:3 से लिया गया है। जब महायाजक जल का अर्घ्य उंडेलता था तो दूसरा पुजारी घरे से दाखरस उंडेलता था। जब यह हो जाता था तो लेवियों द्वारा संगीत बजाया जाता था और फिर भीड़ भजन 118 का 25वां पाठ करती थी, हे प्रभु अब बचाओ, हे प्रभु अब समृद्धि भेजो। इस गीत को होसन्ना होशन्ना कहा जाता था। इस गीत के दौरान बहुत से पुजारी तार की डालियां लहराते हुए आगे बढ़ते थे। मुझे आशा है कि इनमें से कुछ बातें आपको न्यूयॉर्क में घटी किसी घटना की याद दिला रही होंगी जिसमें ये सभी तत्व मौजूद हैं। मैंने बार बार उल्लेख किया है कि बाइबल में यीशु के यरूशलेम में होने का लगभग हर दृश्य 3 तीर्थयात्रा पर्वों में से किसी एक के लिए तीर्थयात्रा के रूप में उनके वहां होने से संबंधित था। आखिरकार यीशु यरूशलेम से बहुत दूर गलील में उत्तर की ओर रहते थे, इसलिए उनके वहां जाने के लिए कोई अच्छा कारण होना चाहिए था। इतना ही नहीं, यीशु को पुरोहिताई और परंपरा आधारित यहूदी धर्म के प्रति बहुत अधिक सम्मान नहीं था जो अब यहूदियों के जीवन के हर पहलू पर शासन करता था, इसलिए उस युग के अधिकांश यहूदियों के विपरीत वह वहां जाने के लिए उत्सुक नहीं थे। आइए उन समयों में से एक पर नजर डालें जब वह यरूशलेम में थे, क्योंकि यह उस पर्व पर केंद्रित है जिस पर हम वर्तमान में विचार कर रहे हैं, झोपड़ियों का पर्व। अपनी बाइबल में यूहन्ना की पुस्तक का अध्याय 7 खोलिए। चूंकि मैं इस बात पर विशेष ध्यान देता हूं कि परमेश्वर के वचन का अध्ययन करते समय हमारा पूरा संदर्भ सही हो, इसलिए हम इस पूरे अध्याय को पढ़ने के लिए समय निकालेंगे। यूहन्ना 7 पूरा पढ़ें। पद 2 कहता है कि यह झोपड़ियों के पर्व का समय था, इसलिए यह पतझर की शुरुआत थी। लगभग 30 ईस्वी में यीशु अपने गृहनगर गलील में थे और यरूशलेम जाने के लिए अनिच्छुक थे क्योंकि यरूशलेम यहूदिया प्रांत में था और ये कहता है कि यहूदी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। वास्तव में जहां यह कहा गया है यहूदी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे भ्रामक है। वास्तव में यह कहता है कि यहूदी उन्हें मारने की कोशिश कर रहे थे। दूसरे शब्दों में यह केवल कुछ यहूदी जो यहूदिया प्रांत में रहते थे, इसलिए उन्हें यहूदियों की उपाधि दी गई थे जो उनके खिलाफ थे। अन्य क्षेत्रों में रहने वाले यहूदी इतने नहीं थे। यीशु के दिनों में गलील के यहूदियों को गैलीलियन कहा जाना अधिक सामान्य था। सामरिया के यहूदियों को सामरी या अंग्रेजी में सामरी कहा जाता था और यहूदिया के यहूदियों को उचित रूप से यहूदियन कहा जाता था। यीशु एक गलीली थे। गैलीलियों को सामान्यतः यहूदियों से नफरत थी। यहूदियों को गैलीलियों से नफरत थी। न तो यहूदियों को और न ही गैलीलियों को सामरियाइयों से कोई खास मतलब था। इतिहास में इस समय यहूदी धर्म बहुत विखंडित था, आम तौर पर क्षेत्रीय सीमाओं के अनुसार, लेकिन राजनीतिक मान्यताओं और पारिवारिक रक्त रेखाओं के अनुसार भी। गैलीलियन यहूदी राजधानी यरूशलम से बहुत दूर थे, इसलिए वे धार्मिक राजनीति और बौद्धिक अभिजात वर्ग से कम प्रभावित थे जो यहूदी धर्म के शासक प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व करते थे जिसका सत्ता का आधार यरूशलम में था। यह बहुत कुछ वैसा ही था जैसा आज यूएसए में है, जहां हम लाल राज्यों और नीले राज्यों के बारे में बात करते हैं। नीले राज्यों का मतलब राजनीतिक रूप से उदारवादी, लाल राज्यों का मतलब राजनीतिक रूप से रूढ़िवादी है।
और सामान्य तौर पर हम पाते हैं कि कोई राज्य वॉशिंगटन डीसी के जितना करीब होता है वह उतना ही उदार होता है और राजनीति के बारीक पहलुओं में उसकी उतनी ही अधिक रुचि होती है। सरकार के केंद्र से जितना दूर होता है, जैसे कि मध्य पश्चिम में लोगों को राजनीति से उतना ही कम सरोकार होता है और तथाकथित बौद्धिक अभिजात वर्ग से कम प्रभावित होते हैं। इसके बजाय वे बस सादा जीवन जीना चाहते हैं और अपने विश्वासों का अधिक बुनियादी तरीकों से पालन करना चाहते हैं। यीशु के समय में पवित्र भूमि में ऐसा ही था। गैलीलियन लोग कैंसस में रहने वाले लोगों के समान थे, जबकि जूडियन लोग न्यूयॉर्क के लोगों के समान थे। लेकिन बड़े मतभेदों और असहमतियों के बावजूद, जबकि गैलीलियन अभी भी यरूशलेम को अपनी धार्मिक राजधानी के रूप में मान्यता देते थे, सामरियाई लोगों ने यहूदी धर्म के अपने अलग ब्रांड को स्थापित करने का कठोर कदम उठाया था। सामरियाई लोगों ने सभी व्यावहारिक उद्देश्यों के लिए यरूशलेम में केंद्रित धार्मिक व्यवस्था से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने अपने स्वयं के उच्च पुजारी के साथ एक अलग पुजारी वर्ग की स्थापना की थी। उन्होंने सामरिया में माउंट गेरिज्म पर अपना खुद का मंदिर भी बनाया था, जहां उन्होंने अपने स्वयं के मंदिर वेदी का उपयोग करके बलिदान किया था। मैं आपको यह सब इसलिए बता रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि मसीह के दिनों में सभी यहूदियों को एक साथ रखना और यह कहना कि यहूदियों ने ऐसा किया और यहूदियों ने ऐसा किया और यहूदियों ने ऐसा माना और ऐसा इतना सरल है कि यह गलत और गलत है, यह बहुत हद तक वैसा ही है जैसे विदेशी देशों में लोग न्यूयॉर्क शहर को रूढ़िवादी अमेरिकी शहर के रूप में देखते हैं, जो औसत अमेरिकी सांस्कृतिक जीवन शैली और दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि वास्तव में हम जो कहीं और रहते हैं जानते हैं कि न्यूयॉर्क शहर अमेरिका में नियम से ज्यादा अपवाद है। यूहन्ना 7:14 हमें बताता है कि झोपड़ियों के पर्व के बीच के दिनों में यीशु मंदिर में शिक्षा दे रहे थे। इसलिए जैसा कि कोई उम्मीद कर सकता है, उन्होंने लैव्य व्यवस्था 23 के नियम का पालन किया और सुकोट के लिए मंदिर की तीर्थ यात्रा की। कुछ यहूदी जिन्होंने उन्हें बोलते हुए सुना, उन्होंने पद 15 में पूछा, ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना अशिक्षित व्यक्ति ऐसी बातें जानता है जो वह सिखा रहे थे, और वह इसे इतने भरोसे और अधिकार के साथ सिखा सकते थे, जिसका अर्थ है कि उनके शब्द हर मुद्दे के मूल में कट जाते हैं। उन्होंने यह क्यों मान लिया कि वह अशिक्षित थे, जबकि ऐसा लगता था कि वह तोरह के बारे में किसी से भी ज्यादा जानते थे जिन्हें उन्होंने कभी सुना था, क्योंकि वह एक गैलीलियन थे।
और पवित्र भूमि में एकमात्र स्थान जहां कोई अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, जो कि जिस तरह से केवल धार्मिक शिक्षा थी, यरूशलेम में स्थित कई रब्बिनिकल स्कूलों में से एक के अधीन थी, और कोई भी अच्छा गैलीलियन कभी भी यरूशलेम के उन स्कूलों में नहीं जाएगा। यहूदी यहूदियों और गैलीलियन यहूदियों के बीच इतना अविश्वास और नापसंदगी थी। यरूशलेम में यहूदी कुछ दिनों के लिए अल्पसंख्यक हो गए, क्योंकि यह तीर्थयात्रा के लिए तंबुओं के पर्व का समय था। पूरे एशिया और रोमन साम्राज्य से यहूदी वहां थे, साथ ही गलील की पवित्र भूमि से यहूदी भी थे, और यहां तक कि सामरिया से भी कुछ लोग थे जो सामरिया के धार्मिक प्राधिकरण के यरूशलेम मंदिर प्राधिकरण से अलग होने से सहमत नहीं थे।
पवित्र भूमि में रहने वाले अधिकांश लोग इस यीशु के बारे में पूरी तरह से जानते थे और जानते थे कि वह उन घृणित गलीलियों में से एक था। हम यह इसलिए जान सकते हैं क्योंकि पद 28 में ऐसा कहा गया है, जब यीशु भीड़ से कहते हैं, आप दोनों मुझे जानते हैं और यह भी जानते हैं कि मैं कहां से हूं। अब तक यीशु को अच्छी तरह से जाना जा चुका था, उनके प्रशंसक और विरोधी दोनों थे। कुछ यहूदी पहले से ही यह मानने लगे थे कि वे मसीहा थे, दूसरों को यह पूरा विचार हास्यास्पद लगा, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उनके दिमाग में यह नहीं था कि मसीहा गलील से आ सकता है। फिर भी कुछ अन्य लोगों ने उन्हें खतरा माना और पसंद किया कि वे किसी भी तरह से चले जाएं। जैसा कि पद 43 में कहा गया है, इसीलिए उसके कारण भीड़ में विभाजन हुआ, और बेशक वह विभाजन जो हम सुरागाचारों में देखते हैं आज भी उनके आगमन के परिणाम स्वरूप मौजूद है। अब मैं इस अध्याय पर बहुत अधिक समय बिता सकता हूं, लेकिन मैं आपको कुछ और बातें दिखाना चाहता हूं, और ध्यान रखें कि यह सब यीशु के झोपड़ियों के पर्व में भाग लेने के संदर्भ में हो रहा है। पद 37 में निम्नलिखित कहा गया है, अब पर्व के अंतिम दिन यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए,
झोपड़ियों के पर्व का आखिरी दिन भव्य समापन की तरह होता है। परंपरा ने उस आखिरी दिन को एक खास नाम भी दिया, होशन्ना रब्बा। उस आखिरी दिन सभी रस्में बढ़ा चढ़ाकर और विस्तारित की जाती हैं। मैं जिस खास रस्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं वह है जल अर्पण समारोह, क्योंकि पर्व के बाकी सभी दिनों में महायाजक जल से भरा अपना सुनहरा बर्तन सिलोम के तालाब से लिया गया, लेकर वाटरगेट से आता था। उसके प्रवेश का संकेत तीन तुरही की आवाज होती थी, लेकिन आखिरी दिन लेवियों ने 7 तुरही बजाई और फिर इसे 3 बार दोहराया। भीड़ इस पल का बड़ी उत्सुकता से इंतजार कर रही थी जिसमें पर्व समाप्त होने वाला था। फिर महायाजक ने गंभीरता से पानी का वह सुनहरा घड़ा कई सीढ़ियां चढ़कर वेदी तक पहुंचाया और तब तक इंतजार किया जब तक भीड़ शांत नहीं हो गई और उसने अपना पूरा ध्यान उस पर नहीं दिया। फिर बड़े नाटकीय ढंग से उसने जल अर्पण पात्र उठाया और आखिरी बार उसमें से पानी डाला। अगले साल तक फिर से ऐसा नहीं किया जाएगा। ठीक इसी समय जब सोने के घरे से पानी निकल रहा था, यीशु भीड़ की ओर मुड़े और चिल्लाकर बोले, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। आप देखिए, यीशु की अधिकांश बातें हमें उनके आसपास चल रहे किसी संदर्भ से पहचानी जानी चाहिए और हमें उनका सही अर्थ समझना चाहिए। आप भीड़ की अचानक और अजीब चुप्पी की कल्पना कर सकते हैं, स्तब्ध और क्रोधित पुजारी, नाराज फरीसी। यीशु ने सबसे बड़े पर्व की सबसे बड़ी घटना और चरमोत्कर्ष जल अर्पण अनुष्ठान का उपयोग खुद को ईश्वर जीवित जल का स्रोत घोषित करने के लिए किया था। उसने झोपड़ियों के पर्व के अंतिम दिन वहीं और उसी समय उसके भाग्य का फैसला हो गया। तो चलिए हम लैव्य व्यवस्था 23 पर वापस आते हैं। परमेश्वर ने लोगों को जो दिलचस्प आदेश दिए हैं उनमें से एक यह है कि उन्हें पर्व के पूरे समय के दौरान सुखकोट बूथों में रहना है। इन खुले हवा वाले आश्रयों को कई तरीकों से बनाया जा सकता है और इसलिए वे भी रब्बी परंपरा के अधीन हो गए। अपने लोगों को सुखा में रहने के लिए कहने का कारण उन्हें 39 वर्षों की याद दिलाना था जब वे जंगल में अस्थाई आश्रय में रहते थे। आज इसराइल में आप सुकोट को बनाने के अनेक तरीके देख सकते हैं, सरल से लेकर जटिल तक। वे सुक्का की छत पर चमकीले रंग की कांच की गेंदें और अन्य आकर्षक वस्तुएं भी लटकाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्रिसमस ट्री के साथ किया जाता है। आमतौर पर लोग अब सुकोट के उन 7 दिनों में नहीं रहते। जो लोग पवित्र दिनों का पालन करने की जहमत उठाते हैं वे खाना खाते हैं और कभी कभी बच्चे उन आश्रयों के अंदर सोते हैं, लेकिन यह बस यहीं तक सीमित है। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। तोरह में इस बारे में बहुत कम कहा गया है कि इन त्योहारों को कैसे मनाया जाना चाहिए। वास्तव में तोरह में इस बारे में बहुत कम कहा गया है कि ईश्वर द्वारा निर्धारित अधिकांश अनुष्ठानों को कैसे मनाया जाना चाहिए, विशेष रूप से सभी बलिदान अनुष्ठानों को हटा दिए जाने के बाद। यह मनुष्यों द्वारा बनाए गए नियम हैं जो इनमें से अधिकांश अनुष्ठानों को काफी हद तक एक समान बनाते हैं और अक्सर बहस का कारण बनते हैं। यह सप्त के लिए भी लागू होता है। इसलिए तोरह में यहोवा हमें बहुत कम आदेश देता है, यह बताता है कि इन विशेष दिनों को कैसे मनाया जाए इस बारे में हमारे पास बहुत अधिक स्वतंत्रता है, लेकिन यह इस बात से पूरी तरह अलग है कि हम उन्हें मनाना चाहते हैं या नहीं। इसके अलावा इन दिनों को कब मनाना है यह भी बिल्कुल स्पष्ट है कैलेंडर पर कुछ असहमति के बावजूद। जबकि मुझे गलत सोच वाली गैर यहूदी ईसाई परंपराओं के एक सेट को गलत सोच वाली यहूदी परंपराओं के एक नए सेट के लिए छोड़ने की धारणा पसंद नहीं है। परंपराओं को स्थापित करने में निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं है और यहूदी लोगों ने हमें हमारे पालन के लिए कुछ बहुत अच्छे और अच्छी तरह से स्थापित शुरुआती बिंदु दिए हैं। यहूदी परंपराओं में से बहुतों को स्वचालित रूप से बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए, जैसे कि सभी ईसाई परंपराओं को स्वचालित रूप से बाहर नहीं फेंका जाना चाहिए। लेकिन परंपराएं यहूदी या ईसाई ईश्वर की आज्ञाएं नहीं हैं। इसलिए जब आप एक परिवार के रूप में या हम एक समूह के रूप में तोरेह की अपनी नई समझ पर काम करते हैं और यह मसीहा यीशुआ में हमारे विश्वास के साथ कैसे जुड़ता है, तो समझें कि हमारे पास बाइबल के पर्वों जैसी चीज़ों के बारे में कैसे स्थापित करने में बहुत अधिक स्वतंत्रता है। लेकिन क्या या कब नहीं, तो आइए इसके बारे में एक दूसरे के प्रति न्यायपूर्ण या आलोचनात्मक न हो, इसके बजाय आइए उस स्वतंत्रता का उपयोग रचनात्मक होने के लिए करें, लेकिन प्रत्येक पवित्र अवसर के ईश्वर निर्धारित अर्थ के प्रति श्रद्धावान और सच्चे रहें। आइए हम परमेश्वर द्वारा नियुक्त इन बाइबलीय पर्वों का उपयोग उन थके हुए और घिसे पिटे मानव निर्मित दिनों के स्थान पर करें जिन्हें हमने पवित्र घोषित कर दिया है परंतु परमेश्वर ने नहीं, और जो अनिवार्य रूप से मूर्ति पूजक छुट्टियों का ही रूपांतरण है।
अब जब आप झोपड़ियों के पर्व के भौतिक पक्ष को बेहतर ढंग से समझ गए हैं, तो इसका आध्यात्मिक पहलू क्या है, खास तौर पर भविष्यवाणी के अर्थ में? सुकोट सहस्राब्दी राज्य की स्थापना का पूर्वाभास देता है जब मसीह अपने पिता के सामने विश्वासियों की पूरी फसल लाता है। यह परमेश्वर के राज्य के लोगों का अंतिम एकत्रीकरण है। यह उस समय जीवित किसी भी व्यक्ति के लिए यीशुआ के प्रभुत्व को स्वीकार करने का आखिरी अवसर है। यह घटना हमारे सामने है, लेकिन मुझे लगता है कि यह बहुत दूर नहीं है।
हमें बताया गया है कि हम उस दिन को नहीं जानते। वास्तव में यीशु को भी वह दिन नहीं पता है जिस दिन अंतिम एकत्रीकरण होगा। फिर भी वह कहता है कि हम कई चीजों के लिए मौसम जान सकते हैं जो अभी भी हमारे लिए भविष्य में है। और मुझे लगता है कि मौसम शब्द का उपयोग करके वह इस तथ्य की ओर इशारा कर रहा था कि हम बाइबल के पर्व कृषि आधारित होने के कारण वास्तविक और निर्दिष्ट मौसमों वसंत ग्रीष्म और पतझर में होते हैं, और इसलिए जैसा कि अब हम बाइबल के पर्वों की अंतर्निहित भविष्यवाणी प्रकृति को समझते हैं, हम जान सकते हैं कि कौन से पर्व उनकी वापसी का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि वसंत के पर्व उनके निष्पादन और पुनरुत्थान के साथ पूरे हो चुके हैं, और शावोत पिंटेकोस्ट की गर्मियों की दावत पवित्र आत्मा के आगमन के साथ पूरी हुई। इसलिए इसमें तीन पतझर के मौसम के पर्वों के अलावा कुछ भी नहीं बचा है। इसलिए उनकी वापसी के मौसम को साल के पतझर के मौसम के अलावा कुछ और देखना मुश्किल है।
भविष्यवक्ता हमें बताते हैं कि परमेश्वर के लोगों के उनके राज्य के लिए अंतिम रूप से एकत्र होने का संकेत तब मिलता है जब यहूदी वापस घर लौटते हैं, और यह झोपड़ियों के पर्व के पैटर्न से बिल्कुल मेल खाता है। पर्व की शुरुआत से कई दिन पहले पर्व की तैयारी में लोग यरूशलेम की तीर्थयात्रा शुरू कर देते थे, वहां पहुंचने के बाद ही पर्व शुरू होता था। अब ऐसा ही है, यहूदी वापस इज़राइल आ रहे हैं, हर दिन और अधिक तीर्थयात्रा चल रही है। एकमात्र चीज जो हम निश्चित रूप से नहीं जानते हैं वह यह है कि अंतिम उत्सव कब शुरू होगा, लेकिन मैं शर्त लगा सकता हूं कि यह तंबू के पर्व पर होगा, बस मुझे नहीं पता कि यह किस वर्ष होगा।
आखिरकार मसीह और उनकी सेवकाई का हर प्रमुख कार्य बाइबल के पर्व के साथ ही घटित हुआ। फसह के दिन उनकी मृत्यु से लेकर मत्ज़ा के पर्व के पहले दिन कब्र में प्रवेश करने तक, प्रथम फलों के पर्व पर उनके जी उठने तक, फिर शावोत पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा का आगमन, हमारे आगे की अगली बड़ी घटना तुरही का पर्व रोश हशनाह योम तेरुआ है, एक पवित्र सम्मेलन का आह्वान, इस मामले में युद्ध का आह्वान, जब मसीही दुष्ट से पृथ्वी ग्रह का स्वामित्व लेने के लिए वापस लौटता है। उस घटना के तुरंत बाद झोपड़ियों का पर्व मनाया जाता है जो सहस्राब्दी में प्रवेश है। दिलचस्प बात यह है कि हमें यह भी बताया गया है कि झोपड़ियों का पर्व सहस्राब्दी तक जारी रहेगा। मेरी जानकारी के अनुसार सात में से यह एकमात्र पर्व है जो जारी रहेगा। हम इसके बारे में ज़करियाह में पढ़ते हैं जो अंतिम दिनों और यीशुआ के 1000 साल के शासन में संक्रमण के बारे में एक भविष्यवाणी है। ज़करियाह 14:16, तब ऐसा होगा कि यरूशलेम के विरुद्ध जाने वाली सब जातियों में से जो बचे रहेंगे वे प्रतिवर्ष राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मनाने के लिए जाया करेंगे। 17 और पृथ्वी के कुलों में से जो कोई राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए यरूशलेम न जाए उसके यहाँ वर्षा न होगी।
शायद चूंकि हम सहस्राब्दी राज्य में ऐसा करने जा रहे हैं, इसलिए हमें अभी से सीखना शुरू कर देना चाहिए, इससे पहले कि हम लैव्य व्यवस्था 24 पर आगे बढ़ें। मैं आपको कुछ ऐसा दिखाना चाहूंगा जो मुझे रोमांचक और काफी गंभीर लगता है। मैंने आपको पहले बताया था कि पर्व के भव्य समापन की प्रक्रिया तंबुओं का मतलब यह था कि महायाजक के मंदिर में प्रवेश करने से पहले लेवियों को 3 बार 7 तुरहियां बजानी पड़ती थी। मुझे यकीन है कि यीशु पतझर के पर्वों के दौरान वापस आएंगे, इसका एक कारण वे 21 तुरहियां बजाना है।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में अध्याय 8 से शुरू होकर प्रभु परमेश्वर पूरे ग्रह पर अपना क्रोध उंडेलना शुरू कर देता है। 7 निर्णयों की एक श्रृंखला है, फिर एक विराम, फिर 7 और निर्णय, फिर एक विराम, और फिर अंतिम 7 निर्णय मसीहा की वापसी और आर्मागेडन की लड़ाई की ओर ले जाते हैं। ध्यान दें कि हमारे पास 7 निर्णयों की 3 श्रृंखलाएं हैं, बिल्कुल 7 तुरही धमाकों की 3 श्रृंखलाओं की तरह, जो उच्च पुजारी को मंदिर के मैदान में ले जाती हैं। यह भी ध्यान दें कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में इन 21 निर्णयों के बाद ही यीशु, जो हमारा उच्च पुजारी है, दृश्य में प्रवेश करता है और उसे हमारे राजा के रूप में मंदिर में अपना स्थान लेने के लिए प्रेरित करता है।
मैं कुछ और भी बताना चाहता हूं, क्योंकि यह सीधे तौर पर पतन पर्व से जुड़ा हुआ है। मसीहा की वापसी की घोषणा करने के लिए हमें बताया गया है कि वह जय जयकार के साथ आएगा। पहला थिस्सलुनीकियों 4:15 में इस बारे में कहा गया है, क्योंकि हम प्रभु के वचन के द्वारा तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुए लोगों से पहले नहीं आएंगे। 16, क्योंकि प्रभु स्वयं स्वर्ग से उतरेगा जय जयकार के साथ, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज के साथ और परमेश्वर की तुरही के साथ, और मसीह में मरे हुए पहले उठेंगे। 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे हवा में प्रभु से मिलने के लिए, और इस तरह हम हमेशा प्रभु के साथ रहेंगे।
इस घटना को इवेंजेलिकल ईसाइयों द्वारा रैप्चर कहा जाता है, और इस बात पर सभी तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं कि यह कब होगा। इन अटकलों को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि प्री ट्रिब, मिड ट्रिब और पोस्ट ट्रिब और अन्य। मैं इस पर थोड़ी देर में संक्षेप में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं मुख्य शब्द चिल्लाहट के साथ जारी रखना चाहता हूं। ध्यान दें कि 1 थिस्सलुनीकियों 4:16 में मसीहा के अवतरण की घोषणा करने वाली इस चिल्लाहट को परमेश्वर की तुरही के साथ जोड़ा गया है, और यह प्रधान स्वर्गदूत की आवाज को भी परमेश्वर की तुरही के साथ जोड़ता है। तो चिल्लाहट का तुरही की आवाज से कुछ लेना देना है। चिल्लाहट के लिए इब्रानी शब्द रुआ है।
3 शरद ऋतु त्योहारों में से पहला पर्व बाइबल में योम तेरुआ कहलाता है। उस दिन को रोश हशनाह, जैसा कि अब किया जाता है, कहना एक तरह का उपनाम है जिसका इस्तेमाल बाइबल में नहीं किया गया है, और यह दिन को एक अतिरिक्त अर्थ भी देता है। योम तेरुआ का मतलब है तुरही के धमाकों का दिन, या तुरही के नारे का दिन, या जैसा कि इसे संक्षेप में तुरही का पर्व के रूप में जाना जाता है। वास्तव में बाइबल में तुरही या शॉफर धमाकों के 3 या 4 विशेष रूप से नामित प्रकारों में से एक को तेरुआ कहा जाता है, और इसका मतलब है चिल्लाना।
तुरही का पर्व सुकोट के पर्व से 2 सप्ताह पहले मनाया जाता है। चूंकि हमें पहला थिस्सलुनीकियों 4:16 में बताया गया है कि मसीहा एक जयघोष के साथ वापस आएगा, और वह जयघोष सीधे परमेश्वर की तुरही से जुड़ा हुआ है, मेरे मन में इस बात को लेकर कोई संदेह नहीं है कि यह जयघोष एक तुरही की ध्वनि है, न कि एक जयघोष जैसा कि लोग शब्दों या अभिव्यक्तियों को चिल्लाते हुए करते हैं। इसके अलावा, चूंकि जयघोष तेरुआ मसीह के वापस आने की घोषणा करता है, और चूंकि तुरही का पर्व झोपड़ियों के पर्व से कुछ ही दिन पहले होता है, इसलिए मुझे यकीन है कि पहला थिस्सलुनीकियों में तुरही के पर्व के दिन का उल्लेख किया गया है। अतः बाइबल हमें दिखाती है कि मसीहा की वापसी और स्वर्ग में प्रवेश की प्रक्रिया क्या है।
सहस्राब्दी राज्य ठीक उसी पैटर्न का अनुसरण करता है जो पतन के पर्वों के लिए है।
सबसे पहले एक चिल्लाहट, एक तुरही होती है, फिर सात न्यायों के तीन सेट होते हैं और फिर मसीह वापस आता है। अब यह कुछ इंजीलवादियों की सिद्धांत आधारित समय सारणी से सहमत नहीं है जो क्लेश से पहले या बीच में उत्साह देखते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से मुझे नहीं लगता कि इस तरह की समय सारणी बिल्कुल भी सही है। ये बाइबल में स्थापित हर ईश्वर द्वारा निर्धारित पैटर्न का उल्लंघन करता है और निश्चित रूप से बाइबल कहीं भी ईसाइयों के क्लेश से बचने के बारे में कुछ नहीं कहता है। यह सिर्फ एक उम्मीद है। यह कहता है कि ईश्वर अपने द्वारा बरसाए जाने वाले दिव्य न्याय को कम कर देगा या इस चट्टान पर कोई भी जीवित चीज मौजूद नहीं रहेगी जिसे हम पृथ्वी कहते हैं। इसके अलावा हमें यह भी समझना चाहिए कि क्लेश और परमेश्वर के क्रोध के बीच बहुत बड़ा अंतर है। बाइबल में जिस क्लेश की बात की गई है उसका परमेश्वर के क्रोध से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि क्लेश का मतलब है मनुष्य की दुष्टता का बेकाबू हो जाना। क्लेश का मतलब है दुष्टता के कारण मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्यों के साथ भयानक काम करना। क्लेश अपने आप में परमेश्वर का कार्य नहीं है, यह मनुष्यों का कार्य है।
दूसरी ओर परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर के आध्यात्मिक प्रतिनिधियों, उनके स्वर्गदूतों द्वारा लाया गया दिव्य न्याय है। यह पृथ्वी और उसके निवासियों पर परमेश्वर द्वारा प्रेरित दंड है। इस प्रकार जब परमेश्वर ऐसा करने का आदेश देता है तो परमेश्वर के स्वर्गदूत सात अलौकिक न्यायों, जिन्हें अक्सर मुहर, तुरही और कतोरह न्याय कहा जाता है, कि उन तीन सेटों के साथ गृह को कुचलते हुए घूमते हैं।
उत्पत्ति की पुस्तक से लेकर अब तक बाइबल का पैटर्न यह है कि परमेश्वर के लोग मानव निर्मित क्लेशों से नहीं बचते, लेकिन हम उसके दिव्य क्रोध से बच जाते हैं। परमेश्वर के लोग उन लोगों के रूप में परिभाषित जो उसके साथ संगति में है, दुष्ट सांसारिक शासकों से नहीं बचते या हमारे विश्वास के लिए शहीद होने से नहीं बचते, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने क्रोध को निर्दोषों पर दोषियों के साथ नहीं उंडेलता। परमेश्वर अपने लोगों को अपने शत्रुओं के साथ नष्ट नहीं करता। इसलिए जबकि मैं इन सभी अंत समय की घटनाओं का सटीक समय जानने का दावा नहीं करता, मुझे यह अविश्वसनीय लगता है कि ईसाई दुष्ट लोगों द्वारा उत्पन्न परेशानियों से बच जाएंगे। यह हमेशा से होता आया है कि प्रभु के साथ उचित संगति में रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है। अधिकांश नया नियम लेखक भयानक मौत मरे, मिशनरियों को नियमित रूप से मार दिया जाता है। आज पूरी दुनिया में ईसाइयों को उनके विश्वास के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है और उनकी हत्या की जा रही है। यह सिर्फ इतना है कि जब तक परमेश्वर को यह महसूस नहीं होता कि कार्य करने का समय आ गया है, तब तक क्लेश और भी बदतर होते जाएंगे। विश्वासियों को जो बच जाएगा वह पृथ्वी पर परमेश्वर के 21 न्याय दंडों के विनाशकारी प्रवाह से है। हम उनके क्रोध का सामना नहीं करेंगे। अतः मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में जब बुराई पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो जाएगी, लेकिन पृथ्वी और उसके निवासियों पर परमेश्वर के क्रोध के फैलने से ठीक पहले स्वर्गारोहण घटित होगा और किसी न किसी रूप में विश्वासियों को उठा लिया जाएगा। मैं यह भी सोचता हूं और मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह मेरी राय है कि ये 21 न्याय दंड बहुत तेजी से आएंगे, जो योम तेरुआ इब्रानी कैलेंडर के अनुसार सातवें महीने का पहला दिन से शुरू होंगे और मात्र 15 दिन बाद झोपड़ियों के पर्व पर समाप्त होंगे। ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि परमेश्वर का क्रोध एक वर्ष के योम तेरुआह पर शुरू हो और उन 21 न्याय दंडों को एक वर्ष या उससे अधिक की लंबी अवधि में उंडेला जाए और फिर दूसरे वर्ष के झोपड़ियों के पर्व पर यीशु आए, क्योंकि यह बाइबल के पैटर्न को तोड़ देगा। यीशु मसीह थे, फसह के दिन मारा गया, अगले दिन मज्जा के पर्व पर कब्र में गया और फिर फलों के पर्व पर मृतकों में से जी उठा। 50 दिन बाद पिंतेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। यह सब एक ही वर्ष में क्रमिक रूप से हुआ। यह सोचने का कोई कारण नहीं है कि पतझर के पर्वों की भविष्यवाणी की पूर्ति कई वर्षों तक फैली रहेगी। मुझे विश्वास है कि वे उसी तरह पूरी होंगी जिस तरह वसंत और ग्रीष्म पर्व पूरे हुए थे। मैं भी इस बात से सहमत हूं कि आज हम जो अंतिम समय के सिद्धांत देखते हैं उनमें से बहुत से सिद्धांतों को रूपक और विस्तार की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें काम करने के लिए स्वस्थ मदद मिल सके, क्योंकि गैर यहूदी ईसाइयों ने बच्चे को नहाने के पानी के साथ बाहर फेंक दिया है। जब हमने निर्धारित किया कि व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं को समाप्त कर दिया गया है और यह कि पुराने नियम अब प्रासंगिक नहीं है, तो हमने परमेश्वर के सभी पैटर्न को भी समाप्त कर दिया। ये पैटर्न नए नियम को समझने के लिए संदर्भ है, इसलिए जब उन्हें नजरअंदाज किया जाता है तो हम अलग रास्ते पर चले जाते हैं, भले ही उसमें कहीं सच्चाई छिपी हो। हम अगली बार लेव्य व्यवस्था 24 से शुरू करेंगे।